ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। यूक्रेन के कीव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोडिमीर जेलेंस्की के बीच आज एक प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक हुई। बैठक के दौरान दोनों नेताओं की मौजूदगी में चार समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। यूक्रेन में सामुदायिक विकास परियोजनाओं, औषधि नियंत्रण मानकों, सांस्कृतिक आदान प्रदान और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। श्री मोदी की यूक्रेन यात्रा पर मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि चर्चा द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, आर्थिक मुद्दों, रक्षा, फार्मास्यूटिकल और कृषि पर केंद्रित थी। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने यूक्रेन में संघर्ष पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत का विचार है कि समाधान खोजने के लिए दोनों पक्षों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने शांति स्थापित करने के लिए हर संभव तरीके से योगदान देने की भारत की इच्छा भी दोहराई। इससे पहले श्री मोदी और श्री जेलेंस्की ने कीव में राष्ट्रीय इतिहास संग्रहालय में बच्चों को समर्पित मार्टिरोजिलिस्ट प्रदर्शनी का दौरा किया। ये प्रदर्शनी युद्ध में मारे गए मासूमों की स्मृति में लगाई गई है। यहां पर श्री मोदी ने बच्चों को द्रवित हृदय से स्मरण किया और उनकी स्मृति में एक खिलौना रखा। इससे पहले उन्होंने कीव में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। 1992 में यूक्रेन के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित होने के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की यह पहली यात्रा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और अमरीका स्वाभाविक सहयोगी हैं और साथ मिलकर वे दुनिया में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं। वाशिंगटन डीसी में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत और अमरीका का मजबूत साझेदार बनना तय है और ये सहयोग बढ़ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विकास की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रक्षा निर्यात के बारे में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये अब 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन पर राष्ट्रव्यापी सूचना शिक्षा संचार आईईसी अभियान शुरू किया है। 10 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और कमजोर आदिवासी समूहों में केंद्र सरकार की योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान के दौरान आधार कार्ड, सामुदायिक प्रमाण पत्र, जनधन खाते और वन अधिकार अधिनियम के लाभार्थियों को पट्टे प्रदान किए जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल सुरक्षा और सुरक्षा दिशा निर्देश 2021 लागू करने का निर्देश दिया है। दिशा निर्देश मंत्रालय के स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग द्वारा बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम पॉक्सो दिशा निर्देशों के अनुरूप विकसित किए गए थे। इनमें सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल प्रबंधन के जवाबदेही तय करने के प्रावधान हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने तथा फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री चौहान ने पटना में किसान संवाद के दौरान किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों से संबंधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी संकल्प पूरे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड से सस्ते ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित किया गया है। नेपाल में आज दोपहर एक बस के नदी में गिर जाने से 14 लोगों की मृत्यु हो गई। बचाए गए 16 यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी। पुलिस ने कहा कि बस में 40 भारतीय नागरिक यात्रा कर रहे थे। घटनास्थल पर 10 गोताखोरों की एक टीम तैनात की गई है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार बनना स्वीकार कर लिया है। वे रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। सुश्री हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी के 4 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के अंतिम दिन लोगों को संबोधित करते हुए इस बात की पुष्टि की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।